नराक्थस्या प्रश्रितस्या हथायनशा षड्धानस्य बलस्या दन्तस्यानुचरस्य च। I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service.
मैं उन संतों के प्रति बहुत आसक्त था और मैं बहुत नम्र था और मेरे पाप जो हैं वो उसी से सब दूर हो गए थे।
In my heart, I had strong faith in them.
मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी।
I had subjugated the senses and I was strictly following them with body and mind.
मैंने इंद्रियों को वश में किया था और मन और शरीर से उसको लगाया हुआ था।
These are the necessary qualifications for one who is serious to be elevated in spiritual life.
ये आवश्यक योग्यता है उस व्यक्ति के लिए जो कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं।
One must seek the association of pure devotees of the Lord.
व्यक्ति को जो है शुद्ध भक्तों का संग की अभिलाषा रखनी चाहिए।
One must hear from them submissively.
और नम्रता पूर्वक जो है उनसे श्रवण करना चाहिए।
And one must faithfully serve these great souls.
और ऐसे महात्माओं को श्रद्धा पूर्वक जो है सेवा करनी चाहिए।
But this service should be done with the consciousness, not simply out of duty, but to please the Lord and to please His devotees.
लेकिन ये जो सेवा है वो सिर्फ कर्तव्य भावना से नहीं करते हुए ऐसे करना है कि भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए।
Service means to please the person that you are serving.
सेवा का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना।
It is not simply a question of performing a ritual.
ये सिर्फ एक रीति रिवाज करने का सवाल नहीं है।
But we must actually put our heart and our soul into what we do.
हमें जो है अपना पूरा हृदय और सब कुछ जो है जो कार्य कर रहे हैं उसमें लगाना चाहिए।
When we speak of seva, we speak of making a sacrifice of our body, our mind, our words, our life for the pleasure of God and for the pleasure of His devotees.
जब हम सेवा कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि अपना शरीर, अपना मन और अपने वचन, अपना पूरा जीवन जो है हम त्याग रहे हैं भगवान के और भक्तों की सेवा के लिए।
In the battle of Kurukshetra, Arjuna did not just do his duty.
कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने सिर्फ अपना कर्तव्य ही नहीं किया था।
But he sacrificed his life for only one purpose.
उसने अपना जीवन जो है सिर्फ एक उद्देश्य के लिए अर्पण किया।
To please Krishna.
वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए।
Some people think that Bhagavad Gita teaches that you must do your duty.
कोई लोग सोचते हैं कि गीता ये बताती है कि अपना कर्तव्य करना चाहिए।
Yes, but you must do your eternal duty.
ये तो सही है, लेकिन अपने शाश्वत कर्तव्य हमें करना है।
Sanatan Dharma means our eternal occupation.
सनातन धर्म का अर्थ यही है कि हमारा जो शाश्वत कर्तव्य है।
Dharma doesn't simply mean religion or faith.
धर्म का मतलब यही नहीं कि खाली श्रद्धा।
Dharma means the constitutional position of every living being.
धर्म का मतलब यह है कि हर जीव की जो वैधानिक स्थिति है।
The innate nature of everyone is their dharma.
धर्म का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का जो अंतरंग स्वभाव है वही धर्म है।
The dharma of salt is to be salty.
ऐसे जो नमक का धर्म है कि नमकीन होना।
The dharma of sugar is to be sweet.
उसी तरह से शक्कर का स्वभाव है कि मिठास रहना।
The dharma of water is to be liquid.
उसी तरह से पानी का स्वभाव है कि तरल होना।
But when water is in an artificial condition, it becomes solid. in the form of ice.
लेकिन जब पानी जब कृत्रिम अवस्था में होता है तो वो जो है तरल न होकर बिल्कुल एक सॉलिड बन जाता है.
But that is not its nature. That is a qualified condition. As soon as it is brought back into normal temperature, again it becomes liquid.
लेकिन वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है. जब तापमान बदल जाता है तो फिर से वो तरल अवस्था में पहुंच जाता है.
The dharma of every living being is that we are part and parcel of the Supreme Lord, Bhagwan.
हर जीवात्मा का ये धर्म है कि हम परम भगवान के अंश हैं.
नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान. We are all like the sun ray is to the sun. We are part of the Lord.
जिस तरह से सूर्य की किरण सूर्य के अंश होती है उसी तरह से हम जो है भगवान के अंश हैं.
The dharma or the natural function of the part is to serve the whole.
एक अंश का यही धर्म है कि पूर्ण की सेवा करना.
Therefore, our eternal dharma, our sanatan dharma, is to be engaged in the service of Bhagwan.
इसीलिए हमारा नित्य धर्म है कि भगवान की सेवा में संलग्न रहना.
And that service must be done in a spirit of devotion, a spirit of love.
और ये सेवा जो है भक्ति और प्रेम की भावना से की जानी चाहिए.
This is the essence of the Gita.
यही गीता का सार है.
Krishna told Arjuna, "You are a warrior. You perform your duty."
Krishna Bhagwan ne Arjun se kaha, "Aap yodha hain. Aap apna kartavya kariye."
Bhaktya atvananyaya shakya aham evam vidur jana gyatam drastam chatatvena praveshtam cha parantapa. But you perform your duty for my pleasure.
Lekin aap apna kartavya jo hai meri santushti ke liye karo.
Arjuna fought that great war simply as an act of love for the pleasure of Krishna.
Arjuna ne ye mahan yuddh jo hai lada wo isiliye ki ek prem ka karya tha Krishna ke santushti ke liye.
It is this bhakti, this pure loving service for the pleasure of our beloved that is our eternal nature and that is the true essence of what is sanatan dharma.
Ye bhakti hai, yahi hamara swabhav hai aur yahi sanatan dharma hai.
And Krishna explains, Tadvidi pranipatena pari prashnena sevaya, that if you want to hear from me, and if you want to serve me, you must approach my devotee, Krishna, inquire submissively from him, and render service to him.
कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे भक्त के पास जाइए नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करिए और उनकी सेवा करिए.
Krishna speaks through the mouth of his devotee to impart knowledge unto us and he receives service through the limbs of his devotee.
Krishna bhagwan apne bhakton ke mukho dwara jo hai hame gyan dete hain aur apne bhakton ke angon dwara jo hai hamari seva ko swikar karte hain.
To associate with such devotees, to hear from them, and to please them by our service is the supreme path of perfection.
ऐसे भक्तों का संग करना और उनका श्रवण करना और अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करना यही जो है परम सिद्धि का मार्ग है.
The power of this process is revealed in this chapter of the Srimad Bhagavatam.
इस विधि की जो शक्ति है वो श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में दर्शाई गई है.
We find here a young boy who was the son of a maid servant.
यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा सा बालक जो कि दासी पुत्र था.
They had no wealth. They had no prestige. They were of a low birth, and they were living in the forest.
उनके पास संपत्ति नहीं थी, उनके पास कोई आदर नहीं था, और वो जंगल में रह रहे थे.
Generally, people consider that when someone lives in the forest, they are uncivilized.
अधिकतर समय लोग सोचते हैं कि अगर कोई जंगल में रह रहा है तो वो असभ्य माना जाता है.
But by the grace of Lord Shri Krishna, a group of great devotees, Bhakti Vedantas, they came to that forest and made it a place where they would remain simply hearing and chanting the glories of the Lord for the 4 months of the rainy season.
लेकिन भगवान के इंतजाम से जो है कई जो भक्त हैं वो एकत्र हुए और चार महीने के लिए वहाँ पर बैठकर श्रवण और कीर्तन करने लगे.
Here in Bombay, the monsoon rains are about to begin.
जैसे अभी बंबई में जो है बरसात का मौसम शुरू होने जा रहा है.
They are very welcomed because they relieve us from the great heat of the summer.
हम इनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये जो गर्मी के दुख है इससे वो दूर करते हैं हमें.
And without them, there will be no water in the agricultural fields, which are necessary for the production of food for all living beings to exist.
और अगर बरसात ना हो तो वो जो अनाज के लिए बरसात पानी जरूरत होता है वो नहीं मिलेगा.
The monsoons are the gift of God.
ये बरसात भगवान की एक देन है.
No rain, no food, no food, no life.
अगर बरसात नहीं है तो अनाज नहीं है और अनाज नहीं है तो जीवन ही नहीं होगा.
Man cannot create rain.
व्यक्ति जो है बरसात को नहीं पैदा कर सकता.
With all of our great, great scientific discoveries, we cannot create rain.
चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक हमने अन्वेषण किए हों लेकिन हम बरसात नहीं बना सकते.
No matter how sophisticated our civilization may be, we should know we are 100% depending on the gifts of God for our survival.
चाहे हम कितनी सभ्यता आगे बढ़े हो हमें मालूम होना चाहिए कि शत प्रतिशत हम भगवान पर निर्भरित हैं अपने जीवित रहने के लिए.
Sometimes in these big cities, we have created a civilization so artificial and superficial, we forget our dependence on God.
आजकल जो है ऐसी कृत्रिम सभ्यता है कि लोग हम भूल जाते हैं कि हम भगवान पर कितने ज़्यादा निर्भर हैं.
And therefore, we become so much immersed in the rat race of civilization, thinking that I, by my work, I will provide for myself and for my family.
और हम इसमें भूल जाते हैं. हम सोचते हैं कि मैं अपने परिवार और अपने लिए जो है मैं पालन पोषण का इंतजाम करूंगा.
And we lose the natural human tendency to be grateful to God for all the gifts of life.
ये मानव में प्रवृत्ति है कि भगवान के लिए धन्यवाद देना हर एक चीज के लिए, उसको हम भूल जाते हैं.
This is the greatest illusion.
यही सबसे बड़ा जो है माया है.
Simple living, high thinking means to live a simple life, always conscious that I am eternally depending on the mercy of God.
सरल जीवन और उच्च विचार का मतलब ये है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि मैं भगवान की कृपा पर निर्भर हूँ.
And our first duty should not be to work hard like asses, trying to get more and more and more and more for ourselves and for our family. Our first duty should be to thank God for all He is giving.
हमारा पहला कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और अपने लिए प्राप्त करें, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना यह पहला कर्तव्य है.
To acknowledge and recognize the gifts of God and the mercy of God in our life.
अपने जीवन में भगवान की भेंट और भगवान की कृपा को जानना और उसके लिए धन्यवाद देना.
And with that consciousness, then we should go out and work.
और उस चेतना से फिर हमें बाहर जाकर कार्य करना चाहिए.
So these monsoon rains really give us a wonderful, wonderful appreciation of our utter dependence on Krishna for our survival in this world.
ये बरसात के जो मौसम है इसमें हमें पता चलता है कि कैसे हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर आधारित हैं जीवित रहने के लिए.
But with everything good comes a sacrifice.
लेकिन हर एक अच्छी चीज के साथ जो है एक त्याग करना पड़ता है.
There is so much inconvenience.
उसमें कई असुविधाएं होती हैं.
But without some temporary inconvenience, without some tapasya, nothing good is accomplished in this world.
लेकिन बिना किसी तपस्या के कोई भी अच्छी चीज हासिल नहीं की जा सकती इस दुनिया में.
So in previous ages when people lived simple lives and they were not so passionately running here and there in motor cars, jet airplanes and all other devices, during the monsoons no one would travel.
तो पिछले जमाने में जब इस तरह के जो है कारों में और प्लेन में लोग नहीं घूमते थे तो उस समय लोग बरसात के समय कहीं बाहर नहीं जाते थे.
The great sages in the renounced order of life They were dedicated only for the welfare of other living beings.
जो महान संत थे, जो सन्यासी थे, वो दूसरों के कल्याणार्थ के लिए अपना जीवन व्यापन करते थे.
Generally, they wandered without any home.
अधिकतर समय तो है वो भ्रमण करते रहते थे बिना किसी घर के.
They would simply go from place to place, preaching the message of Sanatan Dharma to enlighten people to the real goal and the real pleasure of life.
वो एक घर से दूसरे घर जो है घूमते रहते थे लोगों को प्रचार करने के लिए कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है और जीवन का सच्चा मतलब क्या है.
Wherever they would go, they would preach the philosophy of the Gita, of the Bhagavad, and they would induce people to chant the holy name of Krishna.
जहाँ भी जाते वो लोगों को गीता और श्रीमद् भागवत का दर्शन शास्त्र बताते और लोगों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करते.
Therefore, they were considered by all levels of society to be the greatest, most compassionate welfare workers.
तो समाज के हर अंग ये मानता था कि यही जो सबसे कृपालु, सबके कल्याणकारी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं.
You see, a sadhu is not one who takes. A sadhu is one who gives.
साधु वो नहीं है जो लेता है, बल्कि साधु वो है जो देता है.
Sadhu is immersed in a service to God and to all living beings.
साधु जो है भगवान और सब जीवात्माओं की सेवा में रत रहते हैं.
Unfortunately, in this Kali Yuga, we find many sadhus, they just come to take some roti or to take some money, or we just see them sitting on the sides of the roads doing nothing.
दुर्भाग्यवश कलयुग में ऐसे कई साधु होते हैं जो सिर्फ रोटी लेने या पैसे लेने के लिए रहते हैं और कुछ कार्य नहीं करते.
This is not what sadhu means.
ये वास्तव में साधु का अर्थ नहीं है.
The sadhu works harder than anyone.
साधु जो है दूसरों से भी ज्यादा मेहनत करता है.
He's willing to accept risk, he's willing to accept poverty, he's willing to accept all material inconveniences, and he's willing to accept even ridicule from those who he's trying to help.
वो जो है गरीबी या मुश्किलें और जिनको मदद कर रहा है वो उसका मजाक भी करें तो भी वो सब स्वीकार कर लेता है.
He accepts voluntarily the profession of a beggar.
वो अपने आप से जो है एक भिखारी का रोल कर रहा है.
He is begging us to not waste our human existence. He is begging us to turn to God, to chant his names, and to understand the true goal of life.
वो हमसे भिक्षा मांग रहे हैं कि जो है अपना जीवन बेकार मत करो और जो है भगवान का नाम लो और जीवन का जो सही अर्थ है वो जानो.
He has come on his hands and knees to plead and beg us, don't waste this valuable opportunity of human birth.
वो अपने हाथ जोड़कर हमारे से ये भिक्षा मांग रहे हैं कि मानव जीवन का जो है व्यर्थ में तुम मत गवाओ.
You are spending your days working so hard to decorate this dying body, but you are starving your very soul.
आप दिन भर मेहनत करते हैं इस मृत शरीर को सजाने के लिए, लेकिन अपनी आत्मा को भूखा ही छोड़ रहे हैं.
Associate with saintly people, hear the word of God, and chant his holy names.
साधु संग करिए, भगवान के शब्दों को सुनिए और उनका नाम कीर्तन करिए.
Be delivered from this world of suffering and birth and death and enter into the realm of your own spiritual existence, which is eternal, full of knowledge and full of bliss.
जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अपने नित्य जो सच्चिदानंद स्वभाव है उसको आप जानिए.
This is the service of a sadhu.
यह साधु की सेवा है.
But during the rainy season, because it is impossible to travel to reach the conditioned souls, such sadhus would stay in one place amongst each other and purify their own lives by being immersed in hearing and chanting the glories of the Lord.
लेकिन जब ऐसा समय बरसात का समय होता है क्योंकि चलना मुश्किल होता है तो ऐसे साधु एकत्र होकर अपने आप को शुद्ध करते हैं भगवान के श्रवण और कीर्तन के द्वारा.
This is called the Chaturmasya.
इसको चातुर्मास्य कहते हैं.
So these sadhus came to the forest, and by the good fortune of this maid servant and her young child, they were given the opportunity to serve these great devotees.
तो साधु जो वहाँ पर थे और ये दासी और उनके पुत्र का जो है एक भाग्य था कि उनको सेवा करने का एक सुअवसर प्रदान हुआ.
And the child, he would help to clean up after them. He would do the most menial services. But in the meanwhile, he had the great, great fortune of hearing the transcendental words of the glorification of Krishna from them.
तो ये जो छोटा बालक था वो छोटी छोटी सेवा करता, सफाई करता था, लेकिन उसके साथ साथ उसको भगवान के दिव्य कथाओं को श्रवण करने का एक सुअवसर मिला.
एंड बिकॉज ही वॉज जेंटल, ही वॉज हम्बल, एंड ही वॉज एंशियस टू प्लीज देम, व्हाटएवर दे स्पोक एंटर्ड डीपली इनटू हिज हार्ट.
क्योंकि वो नम्र थे और जो क्योंकि वो उनको प्रसन्न करना चाहते थे, जो भी वो कहते थे वो बड़ी गहराई से उनके हृदय में प्रवेश कर गया.
There is a difference between hearing with your ears and hearing with your heart.
तो कानों से श्रवण करना और हृदय से श्रवण करना ये दोनों अलग चीजें हैं.
One who is academically inclined but has no real sense of humility and no real aspiration to serve and please who he is hearing from, such a person hears with his ears.
जो व्यक्ति जो है सिर्फ जो शैक्षणिक तौर पर श्रवण कर रहा है, जो कि जो है वास्तव में प्रसन्न नहीं करना चाहता जिसे सुन रहा है, उसका श्रवण जो है सिर्फ कानों के द्वारा हो रहा है.
Even though the message may be the pure word of God, it goes through his ears and into his mind, but then it is dissipated.
हालांकि वो जो है सुन रहा है भगवान के शुद्ध शब्द, वो कानों के द्वारा मन में प्रवेश करता है, लेकिन फिर वो सब जगह फैल जाता है.
But if one hears from the same person the same words, but that person is humble, gentle, and truly, sincerely wants to serve and please the person he's hearing from, those words will go right to the core of the heart and awaken the soul.
अगर वो व्यक्ति नम्र है और वास्तव में जिनसे सुन रहे उनको प्रसन्न करना चाहता है, तो ये शब्द जो है वास्तव में उस व्यक्ति के हृदय के अंतरंग में प्रवेश कर जाते हैं.
Therefore it is said in Gita, Pariprashnena Sevaya, if you want to know the truth, you must hear submissively and render service to the great devotee of the Lord.
इसीलिए गीता में कहा गया है कि आपको श्रवण करना चाहिए और साथ में सेवा करनी चाहिए उन महात्माओं की.
Throughout India, we see people by thousands and millions are coming to hear the pravachan of great speakers.
हम पूरे भारत भर में देखते हैं कि हजारों लाखों लोग जो है बड़े बड़े वक्ताओं के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होते हैं.
And no doubt this is a pious activity.
और ये कोई इसमें शक नहीं है कि ये एक शुभ कार्य है.
And no doubt it gives us some sentiment and some intelligence by which we have some enriched understanding of the goal of life.
और इससे जो है हमें कुछ जो है भावना आती है जिससे हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि जीवन का ध्येय क्या है.
But generally we find that of all the tens and thousands of people that come to the pravachans, there's hardly a real change in their life or a real ambition to surrender to God.
और हम देखते हैं कि हजारों लोगों में से शायद ही कोई होता है जिसका जीवन बदलता है या भगवान के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है.
Unless we truly have a desire to serve and to please, the message does not enter our heart.
जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि हम सेवा करें और जो है प्रसन्न करें, तब तक ये संदेश हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करता.
It may swim within our mind for some time, but then it's gone.
वो हमारे मन में थोड़ा समय तैर सकता है, लेकिन फिर वो चला जाता है.
Therefore, there is a necessity of approaching a bona fide guru with a willingness to serve, to make sacrifices for the pleasure of Gurudev, and to hear those words with that spirit. Then, the grace of God coming through the transcendental vibration of his mouth purifies our life.
तो इसीलिए आवश्यक है कि श्रवण वो इस भावना से किया जाए, सेवा भावना से, और तब फिर भगवान की कृपा जो शब्दों के द्वारा है वो हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे जीवन को शुद्ध करती है.
This young child we are reading about today, he was obviously not a great intellectual.
ये जो हम छोटे से बालक जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो कोई बहुत बड़े जो है विद्वान नहीं थे.
He was living in the jungle.
वो जंगल में रहते थे.
What education could he have had?
उनको क्या शिक्षण वहां पर मिल सकता था.
But because he was sincere to serve, whatever he heard transformed his consciousness.
क्योंकि वो सेवा करने की भावना थी, इसलिए जो भी उन्होंने सुना उससे उनकी चेतना जो है बदल गई.
And one day as he was cleaning up, he found the remnants of the food that these great devotees had eaten.
और एक बार जब वह सफाई कर रहे थे तो इन महान भक्तों के द्वारा प्रसाद का थोड़ा उच्चिष्ट उन्हें प्राप्त हुआ.
And with a tremendous amount of faith, he took that maha maha prasad.
और बड़ी श्रद्धा भावना से उन्होंने यह महा महा प्रसाद ग्रहण किया.
And that had a tremendous purifying effect in his consciousness.
और उससे जो है बहुत ही ज्यादा उनकी चेतना में परिवर्तन हुआ.
Whatever we do, the benefit comes in proportion to our consciousness.
हम जो भी करते हैं उसका लाभ उस पर निर्भर करता है कि हमारी चेतना कैसी है.
We can go to the holy river Ganges to bathe.
हम पवित्र गंगा नदी में जा सकते हैं स्नान करने हेतु.
And there will be purification.
और उसमें शुद्धिकरण होगा.
But the purification comes in proportion to our faith in the holiness and the sanctity of the river.
लेकिन जो हमारी शुद्धिकरण है वो इस पर निर्भर है कि कितनी ज्यादा हमें गंगा जी पर श्रद्धा है.
If with great reverence and respect we enter into the Ganges with faith in her great powers, faith in the words that the scriptures use to glorify her, and we bathe with that consciousness, then we become indescribably purified by that snan.
अगर हमें ये विश्वास है कि गंगा जी पवित्र हैं, अगर शास्त्रों में उनके यश बताया गया उस पर विश्वास है और अगर इस भावना से हम प्रवेश करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव हमारी चेतना पर हो सकता है.
But if we bathe in Ganges simply as a ritual, without that humility toward Mother Ganga, and without that faith in her glories, then the purification will be minimal.
अगर हम सिर्फ रीति रिवाज के रूप में गंगा माता की प्रति कोई श्रद्धा न रखते हुए सिर्फ बिना नम्रता के अगर स्नान करते हैं तो बहुत ही थोड़ा प्रभाव होगा.
So this child, he had such great faith in these devotees that he felt the perfection of his life was simply to accept the food coming from his plate.
इस बालक को इतनी श्रद्धा थी कि उसको ऐसा लगा कि ये जो उनके महा महा प्रसाद जो उनका था लेने से उनको शुद्धिकरण हुआ.
And because he took that prasad with such shraddha or faith, there was an immense transformation in his consciousness.
क्योंकि उन्होंने श्रद्धा पूर्वक ये प्रसाद ग्रहण किया इसलिए उनकी चेतना में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ.
And after the 4 months had ended, the great devotees continued in their traveling and preaching to the conditioned souls throughout the world.
और उसके बाद जब 4 महीने पूरे हो गए तो सब महान भक्त जो है पूरे विश्व में अपना प्रचार चालू रखे.
And this little child, he was no longer interested in anything but the search for Krishna.
और ये छोटा बालक इसको किसी चीज में रुचि नहीं थी सिवाय कृष्ण की खोज में.
But he was thinking that my mother, she is a widow. She's all alone and she's quite old. So I must stay home with her and take care.
तो वो सोच रहे थे कि मेरी माता जो है वो विधवा है वृद्ध है तो मेरा कर्तव्य है कि उनका ख्याल रखें और इसीलिए वो घर में रहें.
Krishna, Bhagwan, his will is inconceivable but perfect.
भगवान की जो इच्छा है वो अचिंत्य है लेकिन वो पूर्ण है.
Krishna is within the heart of every living being.
कृष्ण जो है हर जीवात्मा के हृदय में स्थित है.
And he orchestrates everything within this creation in such a way that everyone is given what they need.
भगवान पूरी सृष्टि को ऐसे चलाते हैं कि हर व्यक्ति को जो उसकी आवश्यकता है वो मिल जाती है.
Krishna in the heart of a serpent guided this serpent one day to the place where this child's mother was milking a cow.
Krishna Bhagwan jo ki ek saamp ke hriday mein the unhone sarp ko margdarshit kiya ki jahan par wo jo unki mata hai doodh doh rahi thi.
And when that serpent struck the mother fell to the ground dead.
और जब वो सांप ने उस पर आक्रमण किया तो माता जी वहाँ पर मृत गिर पड़ी.
This little child was now living alone in the jungle, no mother, no father, no relatives. He was an orphan.
वो छोटा बालक जब अनाथ हो गया ना माता ना पिता ना रिश्तेदार वो अकेले ही जंगल में रहने लगे.
Can you imagine what type of insecurity an ordinary person would be in that situation.
आप ये सोच ही सकते हैं कि साधारण व्यक्ति को कैसा असुरक्षित महसूस होगा इस स्थिति में.
Who will protect me? Who will provide for me? Who will love me?
कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरा पालन पोषण करेगा और कौन मेरा प्रेम करेगा.
But because this child had heard properly from the great devotees of the Lord, he thanked God for the situation.
लेकिन क्योंकि इस बालक ने महान भक्तों के से श्रवण किया था, इसलिए उसने भगवान को धन्यवाद दिया स्थिति के लिए.
He considered this is Krishna's mercy that I can dedicate my entire existence to seeking his grace in my life.
उसने सोचा कि ये कृष्ण की कृपा है जिससे कि मैं अपना पूरा जीवन जो है उनके अर्पण कर सकूं.
Was he hard-hearted?
क्या वो कठोर हृदय के थे?
Not at all.
बिल्कुल नहीं.
You see, when one dedicates his life in the service of God, all one's relatives are liberated.
जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसके सारे रिश्तेदार जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं.
The shastras and the sadhus tell us 10 generations past and future they're all liberated if we surrender to Krishna.
शास्त्र में बताया जाता है कि अगर हम कृष्ण को समर्पण करते हैं तो 10 कुल ऊपर और 10 कुल नीचे सभी मुक्त हो जाते हैं.
So this child understood, now I could do the greatest service for my mother by surrendering to Krishna.
तो ये बालक समझ गया कि अब मैं कृष्ण की सबसे बड़ी सेवा कर सकता हूँ जो है अपने भगवान को समर्पण करके.
And liberate her soul.
और इस तरह से अपनी माता की आत्मा को मुक्त कर सकता हूँ.
So he began to travel.
और वो भ्रमण करने लगे.
With great, great enthusiasm and intensity, he traveled through the cities.
वो बड़े उत्साह से भ्रमण करने लगे शहरों के बीच में से.
Witnessing what life was like in such places.
और वो देखने लगे कि कैसा जीवन होता है ऐसे स्थानों में.
And then he went into the towns.
फिर वो जो है नगरों में गए.
And he passed through the villages.
फिर वो गांवों के साथ गए.
Then he went through the agricultural fields and the farms.
फिर वो खेतियों के पास गए.
And ultimately he came back into the forest.
अंततः वो पुनः जंगल में आ गए.
And he went deeper and deeper and deeper into the forest.
वो जंगल के अनेक गहराइयों के गहराई में गए.
All the while simply searching for the Lord of his heart.
वो हर समय अपने हृदय में स्थित भगवान की खोज में थे.
One day sitting beside a pond of water he began to meditate.
एक बार एक सरोवर के पास जो है वो ध्यान करने लगे.
And Lord Narayan appeared before him.
और भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए.
From within his heart he could perceive the Lord.
अपने हृदय से जो है वो भगवान को देख सके.
And all of his desires were fulfilled.
और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई.
To see God is to love God.
भगवान को देखना वो भगवान से प्रेम करना है.
But then that beautiful darshan disappeared.
लेकिन फिर वो सुंदर दर्शन जो है अदृश्य हो गया.
And he became very much disturbed.
और वो बहुत व्यथित हो उठे.
So he tried again and again and again to meditate in exactly the same way as he did previously.
वो फिर से बार-बार ध्यान करने लगे जैसे कि उन्होंने पहले किया था.
But there was no one to be found.
लेकिन कोई उनको मिला ही नहीं.
But then a voice came.
फिर एक आवाज सुनाई पड़ी.
It was the voice of Bhagwan Shri Krishna.
वो भगवान श्री कृष्ण के वचन थे.
And that voice spoke to the child and said that in this life you will not see me again.
वो आवाज जो है बोली कि इस जन्म में तुम मेरे को फिर नहीं देख पाओगे.
Such realization is not a cheap or easy thing.
ये जो साक्षात्कार है ये कोई सरल या सस्ती चीज नहीं है.
You must first become completely purified from any slight attachments to this material world.
पहले हमें भौतिक दुनिया से थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए.
And therefore, the burning desire within your hearts to know me, to love me, and to serve me will impel you to engage in my devotional service throughout your life. And in your next birth, you will become my dearmost devotee.
और इस इच्छा के कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ज्ञान प्राप्त करने की, मेरी सेवा करने की, मेरे प्रेम करने की इच्छा होगी और अगले जन्म में आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बनोगे.
In the pangs of separation, this child worked very hard, diligently, intensely engaging in the devotional service of the Lord.
और इस तरह से जो है इसी उद्देश्य से वो बड़ी मेहनत से और गहराई से भगवान की सेवा में लीन हो गए.
In this way, his life ended.
इस तरह से उनका जीवन जो है अंत हो गया.
But by the grace of Sri Hari, that spirit soul of that child was born directly from Lord Brahma.
लेकिन भगवान की कृपा से उनकी आत्मा जो है स्वयं ब्रह्मा जी से प्रकट हुई.
And he was given the name Narada Muni.
और उनको ये नाम दिया गया नारद मुनि.
The greatest of all the saints.
जो सब संतों में सर्वश्रेष्ठ हैं.
The rishi who is the guru even of all the devatas.
वो ऐसे ऋषि हैं जो कि सब देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं.
The most learned and purest of all sadhus.
सब साधुओं में जो है सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा विद्वता प्राप्त.
He became the spiritual master of such great Vaishnavas as Dhruva Maharaj.
वो ऐसे महान वैष्णवों के गुरु बने जैसे कि ध्रुव महाराज.
Prahlad Maharaj.
Prahlad Maharaj.
He was the guru of Vedavyas, the author of the Vedas.
जो वेदों के जो लेखक हैं वेदव्यास उनके भी गुरु नारद मुनि हैं.
He was the guru of Valmiki Muni, the author of Ramayan.
और रामायण के लेखक जो वाल्मीकि जी हैं उनके गुरु भी वे ही हैं.
And in this particular chapter he is speaking to his disciple Vedavyas and he's explaining how he became a devotee.
और इस अध्याय में वो व्यासदेव जी से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कैसे भक्त बने.
It is natural in this world that when we meet a saintly person we want to know how did you become a devotee of the Lord.
ये स्वाभाविक है इस दुनिया में जब हम साधु से मिलते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे भक्त बने भगवान के.
So here Narada Muni is explaining his own story.
तो यहाँ पर नारद मुनि अपने स्वयं की कथा बता रहे हैं.
And he is giving all credit to those saints and sages who so mercifully allowed him to serve them and hear from them.
और वो सारा श्रेय जो है उन साधु और ऋषियों को दे रहे हैं जिन्होंने कि उनको सेवा का और श्रवण का एक अवसर प्रदान किया.
He is explaining even an uneducated, rather uncivilized boy living in the jungles simply by serving the great devotees of the Lord and hearing from them can come to such an exalted position as the guru of all the demigods.
तो ये बता रहे थे कि चाहे एक असभ्य हो अशिक्षित बालक भी हो अगर भगवान के भक्तों की सेवा करने से वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो देवताओं के भी गुरु बन जाते हैं.
And this is the eternal truth that is the most essential aspect of spiritual life.
और एक शाश्वत सत्य है जो कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है.
To associate with saintly persons, to serve them, to please them, to submissively, unchallengingly hear from them, is the means by which the doors to liberation open in our life.
साधु पुरुषों के संग करना, उनकी सेवा करना, उनसे श्रवण करना, उनको प्रसन्न करना, ये तरीका है जिससे मुक्ति के द्वार जो हैं खुल सकते हैं.
महात सेवम द्वारम अहुरव मुक्तेस tamodvaram yoshita sangi sangam. That by associating in this way with mahants, great souls, the doors to liberation, the doors to eternal life are opened wide.
तो इस तरह से महात्माओं के महंतों की सेवा करने से जो है मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं.
But by associating with materialistic people who are too much attached to the objects of the senses, the doors to forgetfulness of our true identity and the ignorance is open wide in our life.
लेकिन भौतिकवादी व्यक्तियों के संग करने से अज्ञान के और भगवान को भूलने के दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं.
We must make as Narada Muni made in his life, the path of truth first and foremost.
हमें जो है सत्य सत्य के मार्ग को प्रथम मानना चाहिए.
Because he submissively heard from these great devotees, he was fearless.
क्योंकि उसने नम्रता पूर्वक इन महात्मा पुरुषों से सुना, इसीलिए वो निर्भय हो गए.
Because he heard in a spirit of humble service, by hearing that message, it created such faith, unshakable faith in his heart, that even when he was alone in the middle of jungle, with no relatives, no brothers, no mother, no father, no one, it was him, the wild animals, he felt no fear in his heart, because he knew this is God's will, and he will protect me, and he will guide me. This faith is the greatest power in all creation, and this faith can be had from no other place but the words of the great souls.
क्योंकि उसने नम्रता पूर्वक साधुओं से श्रवण किया था, इसलिए उनको भगवान में विश्वास था, और इसलिए वो निर्भय थे. जंगल में थे जहाँ पर कोई न भाई न बहन न पिता न माता न कोई रिश्तेदार था, सिर्फ पशु थे, फिर भी उनको विश्वास था कि भगवान की इच्छा है और वह मेरी रक्षा करेंगे. और ऐसी श्रद्धा जो तभी मिल सकती है जब हम महात्माओं के मुख से श्रवण करते हैं.
That faith alone can carry us through all obstacles and crises in our life.
और यही श्रद्धा जो हमको जीवन के बड़ी से बड़ी कठिनाई में पार ले जाने में सहायता कर सकती है.
And bring us peace and fulfillment even in the face of death itself.
और मृत्यु के मुख में भी वो हमें शांति और पूर्णता प्रदान कर सकती है.
That faith can give us hope in the most hopeless condition in this world.
बिल्कुल निराशा की अवस्था में भी ये श्रद्धा हमें आशा दिला सकती है.
That faith can protect us from bewilderment and give us a proper understanding in every situation that comes into our life.
Isi shraddha ke dwara jeevan ki har sthiti mein jo hai hame maya se jo hai bachaya ja sakta hai.
That faith alone can bring us to the spiritual realm.
Yahi jo shraddha hai wo hame adhyatmik daire mein pravesh dila sakti hai.
What wealth is greater than that faith?
Is shraddha se badhkar kya mulyavan cheez hai?
Can any amount of money serve that purpose?
क्या चाहे कितना भी पैसा हो, क्या वो ये कार्य कर सकता है?
Can any position within this world of distinction serve that purpose?
क्या ये कितनी उच्च स्थिति प्राप्त हो जाए तो क्या वो ये कार्य कर सकता है?
Only faith can carry us through every obstacle, every situation of life in a joyful spirit.
ये श्रद्धा ही है जो कि हमें जीवन के हर कठिनाइयों से आनंदमय स्थिति में बाहर ले जा सकती है.
Where there is faith, there can be no misery.
जहां पर श्रद्धा है वहां पर कोई दुख नहीं है.
There's no more valuable a commodity in all of creation than this faith.
इस श्रद्धा से बढ़कर इस पूरी सृष्टि में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है.
And whether you're a little child living in the jungle or whether you're a king, a wealthy man or woman, or a simple peasant, educated or uneducated, it does not matter. This faith is available to anyone who is simply willing, with a submissive desire to serve, to hear from the great devotees of the Lord.
और ये श्रद्धा जो है हर व्यक्ति को मिल सकती है जो नम्रता पूर्वक महात्माओं से सेवा भावना से श्रवण करने के तैयार हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, किसान हो या कोई भी हो.
The words of the great souls, when they are received in our hearts, awaken the infinite faith which is the nature of our very soul.
महात्मा पुरुषों के श्रवण के जो वचन होते हैं वो हमारे हृदय से जो है उस अनंत श्रद्धा को पैदा करते हैं जो कि आत्मा का स्वभाव है.
Therefore, it is emphasized above everything else in life to humbly seek the association of saintly persons is the most important duty and responsibility of every human being.
इसीलिए इस बात पर बार बार जोर दिया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य हर मानव का है कि साधु पुरुषों के सत्संग करना.
And what is the message we hear from such great devotees of the Lord?
और ऐसे महात्माओं से हम क्या संदेश सुनते हैं?
We simply hear from them how we practically in our daily life can attain the supreme perfection.
हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में जो है जीवन की परम सिद्धि को कैसे हासिल कर सकते हैं.
Our Guru Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he had written in one of his sacred purports that the preachers of this Krishna consciousness movement, their business is not simply to defeat people through logic and argument and to speak all kinds of philosophy.
हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी बताते थे कि ये जो प्रचारक हैं कृष्ण भावना में उनका ये धंधा नहीं है कि लोगों को दर्शन शास्त्र में पराजित करना.
He said the preachers of this movement, they have one purpose.
उनका जो है एक ही उद्देश्य है.
And all their logic and all their philosophy and everything they do, everything they say is meant for only one purpose.
चाहे वो जितना न्याय हो चाहे जितना दर्शन हो जो सब कुछ बोलते हैं उसका उद्देश्य एक ही है.
To induce people to sincerely chant the holy name of Krishna.
लोगों को
to sincerely chant the holy name of Krishna.
लोगों को भगवान कृष्ण के नाम के लिए प्रेरित करना.
Because the name of Krishna is the avatar of Krishna in this age of Kali Yuga, which can deliver everyone and anyone of all impurities and bring about a revolution of God consciousness within our heart.
क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम जो है वो हर व्यक्ति को जो है अशुद्धियों को निकाल करके हमारी चेतना में एक क्रांति पैदा कर सकता है.
Is through our words and actions to give a person complete faith in the name of God.
सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य यह है कि अपने शब्दों और वचनों द्वारा जो है हम किसी को भगवान के नाम में श्रद्धा पैदा करें.
For one who surrenders sincerely to the name of God, everything is revealed to him.
जो यह पूर्ण रूप से भगवान के नाम के प्रति समर्पित हो जाता है उसको सब कुछ जो है पता चल जाता है.
So this is the greatest benediction Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu explained, Cheto dharapana marajanam bhava mahadavagni nirvapanam. The supreme prime benediction for all humanity is the chanting of the holy name of God.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ne samjhaya hai ki puri manavta ke liye sabse bada aashirwad hai Bhagwan ka naam sankirtan.
When we associate with great devotees of the Lord, with the service attitude, hear from them the glories of the holy name, we develop faith in the name of God.
जब हम सच्चे महात्माओं से जो है श्रवण करते हैं और सेवा भावना रखते हैं तो फिर हमें भगवान के नाम में श्रद्धा पैदा होती है.
And when we take that name home with us and chant with the faith that has been invested by the words of the saints, very soon all the impurities, all the misconceptions, all the attachments of the heart are removed, and true Sanatan Dharma, the pure love of the soul, is revealed.
और जब हम इस श्रद्धा से जो है भगवान का नाम लेने लगते हैं तो सारी जो अशुद्धियाँ हैं वो निकल जाती हैं और सच्चा सनातन धर्म भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है.
And that prem which is awakened by sadhu satsang and harinam is the ultimate fulfillment of everyone's desires.
और ये सच्चा प्रेम जो है हरिनाम कीर्तन से जागृत होता है वही सबकी जो है सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है.
थैंक यू वेरी मच.
बहुत धन्यवाद.
Now we would like to humbly beg each and every one of you to accept the charity of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu by taking the name of Krishna.
अभी हम सबसे नम्रता पूर्वक ये भिक्षा मांगेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की जो दान है सब स्वीकार करें.
Lord Chaitanya and Lord Nityananda used to go door to door begging.
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे.
They said the only alms we beg is that you take the name of Krishna.
बोलते हम यही भिक्षा मांगते हैं कि आप कृष्ण का नाम लीजिए.
And make your life perfect.
और अपने जीवन को पूर्ण बना दें.
So as their humble servants, we are begging all of you for this one charity. Just take the name of Krishna and make your lives perfect.
और उनके नम्र सेवक के रूप में हम भी यही भिक्षा मांग रहे हैं कि कृष्ण का नाम लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए.
As I am chanting with folded palms like this, allow the name of God to enter into your heart.
और जब महाराज कीर्तन करते हैं तो नम्र हृदय से जो है हाथ जोड़ते हुए भगवान के नाम को हृदय में प्रवेश करने दें.
Everyone, please,
इस तरह से हाथ जोड़िए.
And when you chant, Lord Chaitanya taught, raise your arms in this style.
और जब आप कीर्तन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि दोनों हाथों को इस तरह से भगवान की कृपा याचना.
This asana is that of total surrender. Krishna, I give my life to you.
ये जो आसन है ये बताता है कि पूर्ण समर्पण कि कृष्णा मैं आपको पूरा जीवन आपके अर्पण कर रहा हूँ.
For further details of this cassette, please contact Radhanath Swami Tape Ministry, Sri Sri Radha Gopinath Mandir, International Society for Krishna Consciousness. Address is 7 KM Munshi Marg, Chowpatty, Bombay 400007, India.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, everybody, Hare Bol, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Sri Radhe, Sri Shyam Sundara, Nithai, Nithai, Nithai Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We read, in the scriptures about the great devotees and the special quality of their love for Sri Sri Radha Krishna. How that love, that pure bhakti, was able to inundate their minds and relieve them of all the distress of material desires and material attachments. How rare and how fortunate is that soul who loves Krishna. When those great souls, when they chant the holy names, it is a pure expression of that love. Now, let us all be very honest and sincere. Let us close our eyes and let us look within our hearts. Let us look for that love, that pure devotion, which vanquishes all the anxiety and frustrations of material attachment. Where is that love? How lamentable that wherever we look within ourselves, we find it nowhere. All we find within our heart is greed and envy and pride and lust and so much illusion, anger. And in the name of love, all we find is so many material attachments. Our hearts they are like desert, like a desert. Where is that love for Radha and Krishna? Can you find it? If not, all you have is the power to pray. to pray in a mood of great longing, a helpless and desperate prayer to the Lord of our heart. My dear Lord Krishna, please show me the way and the means by which I can learn to love you. Grant me that desire in which I can surrender my life to you. Now, when we chant the Hare Krishna Maha Mantra tonight, let us chant in this mood that I have no love for Krishna. I have no love for anyone. My Lord, kindly, when I chant your name, let me be crying out that you show me the way to love you and to serve you. Krishna will answer our prayer if we pray with sincere feeling. So let us chant. With this prayer of our heart, let us cry out this prayer of our heart as we chant the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, clap your hands. Hare Krishna, Krishna. Harder, harder. Louder, louder. No, go to Hari. Nitai. Jai Nitai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hare Hare Hari Rama Hari Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Do you want it? Do you want to love Krishna? Do you want his eternal service? If you do, you must cry out for it now. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Ah!
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Play.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Hare Bol
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Radha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna,